السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الأنعام. ويلكم باك. الحمد لله، أهلا وسهلا. آج چھٹی کے بعد پہلی ہماری تفسیر کی کلاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا تعلق قرآن سے جوڑے رکھے اور ہم قرآن سے اسی طرح اپنی روحانی غذا پاتے رہیں، تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے اور ہم اپنے ایمان کو مزید بڑھا سکیں، اور اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا، اس کو سمجھنے اور سمجھانے والا بنائیں. آمین. قرآن ہی کے ساتھ ہماری پوری زندگی ختم ہو اور قرآن ہی ہمارا قبر میں ساتھی ہو. آمین. اور یہ قرآن ہی کی وجہ سے آخرت میں ہمارے درجات بلند ہو انشاءاللہ. آمین. جیسے باقاعدہ جب تفسیر کی کلاس نہیں ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے، حالانکہ نارمل جو تلاوت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرامس ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ حالانکہ قرآن سے تو جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک جو ریگولر جو تفسیر کی کلاس ہوتی ہے جس میں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم یہ قرآن تدبر اور عمل ہی پڑھ رہے ہیں ابھی، تو یہ غور و فکر کی بات یہ اس طرح سے جو ایک سیکوینس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات کہیں اور نہیں آتی ہے. اس بات کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے جب ہم یہ کلاسز ریگولر کلاسز نہیں کر پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ انہی کلاسز سے جوڑے رکھے، قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے. آمین. یہ شروع کرتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 122 سے ہم دیکھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. او من، کیا وہ شخص کانا جو تھا میتن مردہ، فأحییناہ پھر زندہ کیا ہم نے اس کو، وجعلنا اور بنا دیا اس کے لیے، لہو نورن اس کے لیے نور، یمشی وہ چلتا ہے بہی اس کے ساتھ، فی الناس لوگوں میں، کمن اس شخص جیسا، مثل ہو مثال یا اس جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات کہ جو کہ اندھیروں میں ہے، لیس نہیں، بخارجن منہا نکلتا ان سے، کذالک اسی طرح، زینا مزین کیے گئے، للکافرین کافروں کے لیے، مکانوں جو کام تھے یا جو کرتے تھے وہ، یا عمل عمل کرتے تھے، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں یعنی اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو. کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. جیسے کہ جب سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو وحی بھیجی اس کا ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی روشنی میں، یعنی ایک بجلی کڑکی، اس کی روشنی میں سب منور ہو گیا، لیکن جو منافق ہیں وہ صرف ایک زبان سے ایمان لاتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاتے ہیں اور بعد میں ان کے دل اندھیروں میں ہوتے ہیں. تو گویا کہ ایسے ہوں جیسے کہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، سرگردہ ہیں. تو وہی کی سیم یہاں مثال آ رہی ہے، تقریباً اسی سے ملتے جلتے، لیکن یہاں کافر کی بات کی گئی ہے، وہاں منافق کی بات کی گئی تھی. یاد ہے آپ لوگوں کو سورہ بقرہ، آپ لوگوں نے تفصیل سے پڑھے ہوں گے تو جانتے ہوں گے کہ وہاں پر بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ذکر تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھے کہ کیا بھلا آپ جانتے ہیں یا کیا آپ نے دیکھا اس مردہ شخص کو جس کو ہم نے زندگی دی. یعنی یہاں پر اسلام سے پہلے کی زندگی کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے، مردے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی زندگی نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ یہاں پر کتنی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اسلام کی روشنی سے، اسلام کے نور سے نوازا، سمجھے وہ شخص زندہ ہے، حرکت میں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو مردہ ہوتا ہے، آپ कभी इमेजिन करिए कि जो मुर्दा होता है, कभी आपने देखी होगी किसी की डेड बॉडी, कभी आपको किसी को गुस्ल देने का इत्तेफाक हुआ होगा, या कभी किसी को कफन में आपने देखा होगा। तो अगर वो मुर्दे को आप उसके ऊपर सांप लाकर डाल दें या आग का अंगारा रख दें, क्या उससे डरकर भागेगा, उठेगा या बिचकेगा? नहीं, क्योंकि वो मुर्दा है। लेकिन किसी जिंदा इंसान के ऊपर अगर आप सांप फेंक दें या आग का अंगारा डाल दें, या कोई सांप देख ले वो जिंदा इंसान, तो क्या करेगा? वो भागेगा वहां से। तो आप देखिए कितना फर्क है जिंदा और मुर्दा में। तो जो लोग इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो जाते हैं तो समझे वो तो जिंदा है, लेकिन जो लोग इस्लाम को देखकर फिर भी उसको कबूल नहीं कर पाते, उसकी हकानियत को जान लेते हैं, तो उनको मुर्दों से तशबीह दी गई है। यानी पहले मुर्दों, हालांकि यहाँ पहले इस्लाम ले आने वाले शख्स की मिसाल दी गई है और बाद में मुर्दे की मिसाल दी गई है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हम देखेंगे कि वो मुर्दे को पहले देख लें आपके, आप उसको डराएं कि सांप आ रहा है या आंख रख दें, क्या वो डरेगा? नहीं। तो इसी तरह जिनकी रूहें मर चुकी होती हैं, उनको आप कितनी भी अजाब की आयतें सुना दें, उन पर कोई असर नहीं होता। यानी जिंदा इंसान है लेकिन वो इस्लाम के बारे में जानकर भी उसकी हकानियत पर यकीन नहीं करते, ईमान नहीं लाते, उनको आप कितना भी डरा दें। तो ऐसे ही अहले मक्का, जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उनको अजाब की आयतें सुनाई जाती, उनको बताया जाता, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। और कुछ जो जिनके दिलों में खैर की रमक थी, आप देखें वो कैसे इस्लाम को कबूल करते चले गए। तो इसी तरह जिनकी रूहें मुर्दा हैं, उनका दिल नहीं चाहता जन्नत हासिल करने का। तो ऐसे लोग दरअसल तकब्बुर में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो मुर्दा इंसान होता है तो उसका जिस्म किस तरह अकड़ जाता है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसके हाथ इजीली मूव नहीं हो सकते क्योंकि खून जम जाता है जिस्म में। तो ऐसे ही जो जिंदा इंसान होता है जिनकी रूह मर चुकी होती है, तो एक्चुअली वो तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं और अकड़ जाते हैं, उनको फिर कोई खैर की बात नजर नहीं आती, उनका जिस्म अकड़ जाता है मादी तौर पर। तो इन मादी तौर पर उनकी रूह मर जाती है, जिस्म में जान तो होती है उनके लेकिन रूह उनकी मर जाती है और उनको कोई खैर नजर नहीं आती। अब यहां से आप उस मुर्दा की मिसाल का से अंदाजा लगाइए कि यहाँ अल्लाह ताला हमें फरमा रहे कि जो मुर्दा था, यानी ऑलरेडी वो मुर्दा था, इस्लाम से पहले इंसान की जिंदगी को किस चीज से तशबीह दी गई है? मरे हुए शख्स से। यानी जमाने जाहिलियत क्या है या इस्लाम के बगैर जिंदगी क्या है? एक मरे हुए शख्स के बराबर। तो फिर हमने उसको जिंदा किया और उसको रोशनी अता की। तो जिंदा किस तरह से किया कि उसको इस्लाम की रोशनी अता की, इल्म और अमल की रोशनी अता की, उसको नूर अता किया, नेकियों का, उसको नेकियों का नूर मिला। यानी ईमान कबूल करने के बाद, ईमान अपनाने के बाद वो नेकियां करता चला गया तो उसका नूर बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये है वो नूर, यानी ईमान की रोशनी। एक शख्स जिसके पास नूर ईमान है, अमल है, वो अपने वजूद से खुद भी फायदा उठाता है और दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है, सुभान अल्लाह। तो ऑटोमेटिकली एक्चुअली जब ईमान का नूर होगा और नेकियों का नूर होगा, तो चूंकि उसकी वजह से आसपास का माहौल रोशन होगा, तो खुद ब खुद दूसरे लोग उस रोशनी से फायदा उठाते चले जाएंगे। अब देखिए जो भी रोशनी होती है, जो लाइट होता है, जो नूर है, आपने आप देखिए कि वो सिर्फ एक छोटी सी जगह को नहीं घेरता, यानी लाजमन आप एक छोटा सा लाइट भी लगाते हैं तो वो आसपास के इलाके को भी कवर करेगा, रोशनी फैलाएगा, है ना। अब जरा सा पर्दा, जब आप अपनी खिड़कियों पर पर्दे डालते हैं और आप देखिए छोटा सा हिस्सा बाकी रह जाता है, कोई छोटी सी दुरुस्त बाकी रह जाती है, तो उसमें से रोशनी छनकर आती है कि नहीं आती है, आप बताएं। तो यह है नूर की मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह, कि नूर अपना असर करके रहता है, लाइट और रोशनी अपना असर फैला के रहती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मुसलमान हैं, आपके अंदर ईमान है और आप नेकियां करें और उसने उन नेकियों का असर आसपास के लोगों पर ना हो। यानी आपको अपने आप को ऐसा रोशन और मुनव्वर करना है ईमान से कि आपको देखकर आसपास का माहौल भी रोशन हो जाए और उस रोशनी में लोग खरे और खोटे की परख कर सकें, कसौटी आप उनको फराहम करें कि वो सही और गलत को परख सकें, जांच सकें। सुभान अल्लाह। ईमान, तो ये जो ईमान है किसी मस्जिद किसी मदरसे में कैद होकर नहीं बैठ जाता, बल्कि ईमान तो उसकी रोशनी बाहर फैल कर रहती है, सिर्फ मस्जिदों में और हुजरों में महफूज नहीं हो जाती, ये महदूद नहीं हो जाती। जो ईमान की रोशनी लेकर निकलने वाले लोग हैं, जो ईमान की वजह से अपने आप को मुनव्वर करते हैं, नेकियों की वजह से उनकी रोशनी बढ़ती जाती है, तो ये मस्जिदों की हद तक नहीं रह जाते, हुजरों में बैठे नहीं रहते, खानकाहों में बैठे नहीं रहते, मदारस में बैठे नहीं रहते, बल्कि जिंदगी के मैदान में, मैदान अमल में निकल आते हैं ताकि उनकी रोशनी से दूसरे लोग भी फायदा उठाएं। ये ये छोटे छोटे चिराग लेकर फिरते हैं ताकि पूरी दुनिया रोशन हो। सुभान अल्लाह। अब देखिए, जिनके पास चिराग होता है, क्या कभी आपने देखा कि चिराग जलाया गया हो और उसको कवर कर दिया गया ऊपर से, बिल्कुल पैक बंद, यानी कोई मेटल के कवर से? बल्कि चिराग को कौन सा कवर लगाया जाता है, उल्टा ऐसा कवर लगाया जाता है, ग्लास वाला कवर लगाया जाता है, जिसमें से रोशनी छन छन कर बाहर आए, या देर तक रोशनी रहे, या दूर तक रोशनी फैले। चिराग को कभी भी नीचे नहीं रखते, बल्कि चिराग को कहाँ रखते हैं, ऊंचाई पर रखते हैं, जहां से सब जगह रोशनी आए, है ना। चिराग इसलिए रखा जाता है ताकि खुद का घर भी रोशन हो और आसपास का भी रोशन हो, दूसरों के लिए भी रोशनी का जरिया बने आसपास के लिए। तो जुलुमात कुफर की, कुफर का अंधेरा, और उसका अपोजिट रोशनी, नूर। आप खुद बताइए कि एक नॉर्मल इंसान से भी हम पूछेंगे, बल्कि किसी बच्चे से भी पूछेंगे, तो उसको क्या अच्छा लगेगा, अंधेरा या रोशनी? रोशनी ना, हर कोई रोशनी को पसंद करता है। आज के दौर में अगर बिजली चली जाती तो आप सोचे कि हम कितने, हम हाथ पांव हमारे फूल जाते हैं और कुछ काम हमको सुझाई नहीं देता, जब तक कि या तो इन्वर्टर पर सारी चीजें चलती ना रहे या फिर दोबारा बिजली ना आ जाए। तो इस्लाम को नूर से तशबीह दी गई है कि जिसके भी दिल के अंदर इस्लाम की रोशनी आ जाती है तो उसका दिल, दिमाग, सब कुछ रोशन हो जाता है, वो अंधेरों में नहीं रहता। तो भला एक शख्स जो कि था, यानी अल्लाह तबारक व ताला की हिदायत अदा करने से पहले वो मैतनी मुर्दा था, यानी कुफ्र और जहालत और गुनाहों की तारीकियों में डूबा हुआ था। फाहिए ना हो, फिर हमने उसको जिंदा किया, तो अल्लाह ताला ने उसे इल्म, ईमान और इताअत की रोशनी के जरिए से जिंदा कर दिया, और वो उस रोशनी में लोगों के दरमियान चलता फिरता भी है, अपने मामला की वजह से, बसीरत से, जो भी अल्लाह ताला ने उसको गौर व फिक्र की सलाहियत दी है, तो वो रास्ते को जानता भी हो, भलाई की मारिफत भी रखता हो, या नेकियों को तरजीह देता हो नेकियां करने को, अपने आप को गुनाहों से बचाता हो, अपने आप पर अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को नाफिज करता हो, और दूसरों को भी की तरफ दावत देता हो, कोशिश करता हो कि वो लोग भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें, बुराई को रोकने की कोशिश करता हो, क्या ये उस शख्स के बराबर हो सकता है जो जहालत, गुमराही, कुफ्र और गुनाहों की तारीकियों में डूबा हुआ हो? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। और फिर निकलने वाला भी ना हो वहां से, लैसा भी खारिज मिन्हा, कि वहां से निकलने वाला ना हो, यानी क्योंकि ऐसे शख्स के दिल और दिमाग के दरवाजे ही बंद हो गए, उसकी रूह मुर्दा हो चुकी है, वो तारीकियों के रास्ते पर ही चलता रहा है, भटकता रहा है, बस जब उसे बदबख्ती घेर लेती है और वो उसमें से निकल ही नहीं पाता, यानी वहीं भटकता रहता है, यानी उसको खैर मिलती ही नहीं है, उसका दिल मुनव्वर ही नहीं होता ईमान की रोशनी से। तो ये हमें असल में, यह हमें गौर व फिक्र की दावत दी गई है, असल में एक मिसाल के जरिए से समझाया गया है, सवालिया अंदाज से हमें पूछा गया। आप देखिए, इसी से गौर व फिक्र पैदा होता है, सवालिया अंदाज से गौर व फिक्र पैदा होता है। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर गौर व फिक्र पैदा करना चाहते हैं कि तुम सोचो तो सही, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो। हमें एक तरह से मुतनब्बे किया जा रहा है, क्योंकि अक्ल इसका इदराक कर सकती है और मारिफत रखती है कि ये दोनों किस्म के लोग बराबर नहीं हो सकते, जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं होते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो शख्स जो रत्ती भर भी अकल रखता है, इस हालत में रहने को कैसे तरजीह दे सकता है, वो तो गुमराही में, अंधेरों में हैरान और सरगर्दा फिरता रहे, यानी अकल भी गवारा नहीं करती ना। अकल पसंद करेगी इस बात को कि अंधेरे में रहे इंसान, है ना, नहीं पसंद करेगी। तो इसीलिए काफिरों के जो आमाल हैं, ज़ुय्यिना लिल काफिरीन मा कानू यअमलून, मुज़य्यन कर दिए गए हैं, यानी काफिरों को तो उनके अपने आमाल ही बहुत अच्छे लगते हैं, कि जो कुछ भी वो करें, शिर्क, बुत परस्ती और गुनाह के काम, अंधेरों में रहना, उनको तो वो उसी में मस्त और मगन है। शैतान ने उनके उन आमाल दरअसल उनको इतने खूबसूरत बनाकर दिखा दिए हैं कि वो उसी में मगन है, उनको वही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनको खुशनुमा बनाकर दिखाए हैं, उनके दिल उन्हीं बुरे आमाल से सजे रहते हैं, यहां तक कि उनको ये आमाल अच्छे लगने लग जाते हैं और हक दिखाई देते हैं, और ये चीजें उनका अकीदा बनकर रह जाती हैं, उनके दिल में बैठ जाती हैं, और फिर उनके किरदार में ये चीजें शामिल हो जाती हैं, यानी अपनी बुराइयों को भी फिर वो अच्छाइयां समझने लगते हैं, अंधेरों में भटकने को भी वो अच्छा समझने लगते हैं, बातिल के ऊपर डटे रहने को भी वो अच्छा समझने लगते हैं। तो शैतान ने उनको खूबसूरत बनाकर बता दिए हैं उनके बुरे आमाल भी। जी बिल्कुल। तो आप देखें कि इससे फिर क्या हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें इस ईमान का और इस रोशनी का और इस नूर का मिलना कितनी बड़ी खुशकिस्मती है ना। इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम ऐसे अंधेरों में होते तो कौन हमें बताता। तो सुबहान अल्लाह, कितना अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदाइशी तौर पर मुसलमान बनाया। ये अगर कोई रिवर्ट हुआ है तो उस पर भी अल्लाह ताला का एहसान है और शुक्र लाजिम है कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत की रोशनी से नवाजा। तो एक काफिर और एक ईमान वाले की मिसाल बताई गई है कि मुर्दा रूहानी तौर पर मुर्दा है, यानी एक शख्स पहले काफिर था, फिर वो इस्लाम ले आया और उसे वही के इल्म की रोशनी नसीब हुई। लोगों में रहकर वो उसी रोशनी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है, और दूसरा शख्स कुफ्र और शिर्क और जहालत और दलालत की तारीकियों में डुबकियां खा रहा है, उसे कोई राह भी नहीं मिलती वहां से निकलने की। तो दोनों की हालत यकसा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो काफिरों को उनके बुरे आमल खूबसूरत बनाकर शैतान पेश करता है। तो फिर हमें दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे ऐसे अंधेरों से, ताकि हम अंधेरों में भटकते ना रहें, बल्कि अल्लाह ताला हमें हमेशा ईमान, इल्म की नूर का नूर और रोशनी अता करता रहे। आमीन। आगे वाली आयत देखिए, आयत नंबर 123। वकذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 23। دونوں آیتیں ایک ساتھ دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنا دیا ہم نے فی کل قریتن ہر بستی میں اکابرہ بڑے لوگوں کو مجرمیہ جرائم پیشہ لیم کروفیہ تاکہ وہ مکر کریں اس میں یعنی چالیں چلیں وَمَيَمْ كُرُونَ اور نہیں مکر کرتے وہ الا مگر بے انفسام اپنے ہی آپ سے وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اور جب آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی قالو تو کہتے ہیں لن نؤمنا ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم حتی یہاں تک کہ نوتا دیے جائیں ہم مثل ما اوتی ہے رسول اللہ مثل اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول اللہ اعلم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے حیثو جہاں یہ جلو رکھتا ہے رسالتا اپنی رسالت سیوسیب الذین ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے اجرم و جرم کیے صغار ذلت عند اللہ اللہ کے ہاں عذاب اور شدید عذاب عذاب شدید شدید عذاب بما کانوا یمکرون اس کی وجہ جو وہ مکر کرتے چالیں چلتے۔ روانی والا ترجمہ دیکھیے۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں، پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پر مجرموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں کچھ لوگوں کو، یہاں یا وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں، جو متکبرین ہیں، ان کو خود ہی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ مکر و فریب کرے، لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو وہ دوسروں کے لیے مکر و فریب نہیں کرے بلکہ خود ہی اپنے مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کے ہی خلاف الٹا چالے چل رہے ہیں، کیونکہ جو بھی چالیں وہ چلتے ہیں ایمان والوں کے خلاف تو ایکچولی وہ چالیں خود انہی پر الٹ جاتی ہیں، کیونکہ ایمان والے تو ہمیشہ فائدے ہی میں رہیں گے، ہے نا، چاہے وہ ایمان لا کر زندہ رہیں یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، یا ان کو نقصان ہو دنیاوی یا ان کو فائدہ پہنچے، تو ایمان والے تو ہر حال میں ہی فائدے میں رہیں گے۔ اصل نقصان تو کس کا ہے؟ اصل نقصان تو ایمان نہ لانے والوں کا ہے، اندھیروں میں بھٹکنے والوں کا ہے، ایمان والوں کے خلاف چالیں چلنے والوں کا اصل نقصان ہے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ہر بستی میں ایسے کچھ لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہاں کے جو بڑے بڑے مجرم ہیں وہ چالیں چلتے رہیں، और उनकी चालों में वो खुद अपने आप ही फंसते जा रहे हैं, लेकिन उनको इसका शऊर ही नहीं है। जितने भी ऐसे बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, एक्चुअली वो बहुत ही देखा जाए तो अक्ल से पैदल भी होते हैं, हालांकि अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, लेकिन उनको शऊर ही नहीं है कि वो खुद उन चालों में खुद ही गिरफ्तार हो रहे हैं। तो कुफार के जो मकर है वो उन्हीं पर उलट पड़ते हैं, जैसे कि मक्का के जो सरदार थे वो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम कर रहे थे और चालें भी चल रहे थे वो लोग। बल्कि हर बस्ती के सरदारों का यही हाल होता है कि वो हक के रास्ते में रुकावटें डालते हैं। ताइफ के लोगों को आप देख लीजिए, वहां के बड़े बड़े सरदारान को, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो वहां पर अब्दुल्ला बिन उबई को देख लीजिए, या और भी बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस थे जो बन गए थे वहां पर। तो ये जो मकर फरेब करते हैं, और यही लोग अल्लाह ताला के नजदीक दरअसल सबसे बड़े मुजरिम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हक की दावत के खिलाफ खड़े होते हैं, लोग हक बात लोगों तक पहुंचाने नहीं देते, उसमें रोड़े अटकाते हैं। और आज ये काम गैर मुस्लिमों के अलावा मुसलमान भी कर रहे हैं। आप खुद देखें कि जैसे अच्छी कोई कहीं क्लासेस होती है, या अगर कोई लोग ये काम कर रहे हैं सही काम, तो खुद उल्टा मुसलमान ही उनके खिलाफ दुश्मनी पर उतर आते हैं कि ये काम तुम क्यों कर रहे हैं, हमारी दुकान यहाँ पर चलने दो। इन बाज़ों का खुद मुसलमान ही हक की दावत में रोड़े अटकाने वाले बन जाते हैं। तो ये जो चौधरी हैं, सरदार हैं, बड़े बड़े कौन लोग होते हैं, जो मुआशरे के ट्रेंड सेटर्स होते हैं, जो मुतकब्बिर होते हैं, तो ये मुजरिम, इनका सीना दरअसल तंग होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसी के आगे वाली आयत में कि ये लोग इस्लाम से रोकने की कोशिश करते हैं, इस्लाम के रास्ते में हर तरह की रुकावट खड़ी करते हैं। तो ये लोग कुफ्र से ज्यादा मरऊब होते हैं, कुफ्र उनको ज्यादा पसंद होता है, ईमान के मुकाबले में कुफ्र से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और बाज़ औक़ात ये वो लोग भी होते हैं जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन खुद मुसलमानों ही के खिलाफ, हक बोलने वाले के खिलाफ डट जाते हैं। जी बिल्कुल, नबी के खिलाफ प्लानिंग, हक को दबाने की कोशिश करते हैं, लोगों को शिर्क और गुमराही में मुब्तला करते हैं। यानी बहुत सारे मुसलमान होने का दावा करने वाले लोग भी ऐसा काम करते हैं। तो ये लोग अल्लाह के नजदीक बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि हक की दावत देने से रोकते हैं। जैसे फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मौजजात देकर कह दिया था कि ये तो सरीह जादू है और इसका मकसद हुकूमत पर कब्जा करना है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितने मकर फरेब ये चाहे कर देखें, आखिर खुद ही वो इस जाल में फंस जाएंगे, मगर इस वक्त उन्हें बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये वो लोग हैं जो बहुत ही बदबख्त होते हैं, जिनको खैर से कोई सरोकार नहीं होता। तो हर बस्ती में, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, गुनहगार लोग, सरदार या लीडर्स या अमीर लोग, जिनका जुर्म सरकशी होता है, तकबर होता है, हीले बहाने करते हैं, फरेबकारी करते हैं, शैतान के रास्ते की तरफ दावत देते हैं, अंबिया और उनके पैरोकारों के दुश्मन बन जाते हैं, उनके खिलाफ जंगे करने लगते हैं, साजिशें करते हैं। लेकिन उनकी साजिशें और फरेबकारी सब एक्चुअली उनके ही खिलाफ जाती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कबार अइमा, यानी जो ऐसे हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, इन मुजरिमों के खिलाफ उनको खड़ा कर देता है। और आप देखिए, इन यहाँ पर अकाबिर कहा गया है ना, तो कहीं पर भी जब किसी का असर होता है, किसका असर होता है, आम लोगों का असर नहीं होता, जो अकाबिर होते हैं उन्हीं का असर होता है। जैसे अकाबिर मुजरिम होते हैं, ऐसे अकाबिर उलमा भी होते हैं, ये बात आप याद रखिए। और जो अकाबिर उलमा होते हैं वो अपना अच्छा असर डालते हैं, और जो अकाबिर मुजरिम होते हैं वो अपना बुरा असर डालते हैं, जैसे चौधरी, सरदार, मीडिया, उस्ताद, लीडर्स, ट्रेंड सेटर्स। तो आप देखें कि ट्रेंड सेटर्स, उस्ताद, चौधरी, सरदार अच्छे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और आजकल तो मीडिया सबका सरदार बना हुआ है ना। तो ये जो उस्तादों ही की ये क्वालिटीज होती है असल में, या जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी क्वालिटीज होती है, क्योंकि वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ, यानी वो अपना कुछ ना कुछ असर छोड़ जाते हैं, इम्पैक्ट होता है उनका, कुछ असर होता है, यानी वो मुआशरे पर असरअंदाज होने वाले लोग होते हैं, जभी तो उनको यहाँ पर यह अकाबिर कहा गया है। तो जैसे अकाबिर मुजरिम होते हैं, ऐसे अकाबिर उलमा भी होते हैं। तो हमको बहुत सोच समझ कर किसी को फॉलो करना है। तो अब ये जो मुजरिम अकाबिर होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, ईमान से कुफर की तरफ ले जाते हैं, नेकियों से गुनाहों की तरफ उनको मोल्ड करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, ईमान से गुमराही की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और गुनाहों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, या फिर गुनाहों को हल्का करके दिखाते हैं। तो ये बड़े बड़े लोगों का ही काम होता है असल में, जो सरदार होते हैं, जो आप आज के दौर में जैसे अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंसर का नाम दे सकते हैं उसको, है ना। सही है नाम, ये अचानक जहन में आया कि अभी कितना सुन रहे ना, इन्फ्लुएंसर फिला, इन्फ्लुएंसर फिला फिला फिला, पहले कभी हमने सुना था यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर? और आप देखिए लोग कितना कॉपी कर रहे हैं, और आप देखिए आज हम कितने दीवाने हो गए ना, यानी हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो कितना रील्स के पीछे पड़ी हुई है। यानी बच्चों को घंटों घंटों रील्स देखने के अलावा कोई काम नहीं है, है कोई काम आप बताएं? एक्चुअली रील्स देखा रहे तो क्या है, नकल है ना ये तो, यानी जिसको हम एक्टिंग की जुबान में क्या कहेंगे, मिमिक्री, जो भी कहते हो, यानी किसी की नकल उतारना, देसी पेरेंट्स की नकल उतारना, फुप्पियों को बुरा भला कहना, या दादा दादी नाना नानी उस पर मजाक बनाना, रील्स में है क्या आप बताइए? घंटों रील्स देखते बैठे रहना और उसमें अपना टाइम जाया करना, एक्चुअली देखा जाए तो ये आज का जो मीडिया है, या आज के जो जितने भी ऐप कह सकते हैं उसको, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और पता नहीं क्या कुछ है, तो ये सब मीडिया उस्ताद बने हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं ना ये, यानी लोगों के जहनों को उसी तरफ मोड़ रहे हैं ना, अकाबिर का काम करें ना। और अकाबिर अगर हम मुजरिम ना भी कहें इनको, लेकिन अकाबिर बहकाने वाले तो कह ही सकते हैं हम, टाइम वेस्ट करने वाले तो कह ही सकते हैं हम उनको, ये रील्स के जरिए से या मीडिया के जरिए से। तो यहाँ पर उलमाए कराम कहते हैं या मुफस्सरीन कहते हैं कि जैसे अकाबिर मुजरिम होते हैं, ऐसे अकाबिर उलमा भी होते हैं। तो हमको किसको फॉलो करना चाहिए फिर, ऐसे उस्तादों को, ऐसे उलमा को, ऐसे लोगों को जो नेकी की तरफ दावत देते हों, जिनका मुआशरे पर कुछ असर पड़ता हो या असर होता हो, जो अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देते हों, जो अपने नफ्स से जहाद करते हों, जो दूसरों को भी अपने नफ्स को कंट्रोल करने की दावत देते हों, जिनके नजरियात, जिनका तरीक़ेकार अल्लाह के दीन की सरबुलंदी हो, जो नेकी के रास्ते पर गामजन हो, जो हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हों, अल्लाह ताला फिर उनको अपनी मदद से नवाजता है, को साबित कदमी अता करता है, कामयाबी उन्हीं को अता करता है और दुश्मनों को डिफीट करता है, और अहले ईमान के ही हाथों फिर फतेह और सरबुलंदी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बड़े बड़े मुजरिम थे उनका क्या कहना था, हसद और बगावत की बिना पर वो कहते थे कि अच्छा ये जो नबूवत है ये हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि हम भी बड़े हैं, हम भी सरदार हैं, हम भी काबिल हैं, हम भी मालदार हैं, हम बेटों वाले हैं। तो कहते थे कि हम तो ईमान ही नहीं लाएंगे जब तक कि हम, या तो हमको खुद वैसा ना बना दिया जाए। और ये जो नबूवत और रिसालत मिली उनको, उस पर भी एतराज था कि इनको क्यों मिल गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये तो हमारे हिसाब से मिलना चाहिए था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो ताइफ के सरदार थे, रसूल अकरम जब उनसे बात करने गए थे, तो आप देखिए तीनों सरदारों ने क्या कहा था कि तुम्हें किस में नफर मिली है सरदारी, हम इसके ज्यादा हकदार थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कहते कि जो नबूवत और रिसालत है उस पर भी उनको एतराज था कि अल्लाह ताला ने ये रसूल अकरम को क्यों अता कर दी, इन्हें उनकी खुद पसंदी की इंतहा देखिए आप, या उनका तकबर देखिए हक के मुकाबले में, कि अल्लाह ताला जिस चीज को खुद चुनता है या जिस चीज के लिए किसी को चुनता है उस पर भी उनको एतराज था, यानी अल्लाह ताला के फजल और एहसान पर वो एतराज कर रहे थे जिसको अल्लाह ताला ने अपने फजल और एहसान से नवाजा था। तो अल्लाह ताला ने उस एतराज को दूर करते और रद्द करते हुए फरमाया कि ये लोग भलाई की सलाहियत ही नहीं रखते, यानी ये अंबिया और रसूल बनना तो बहुत दूर की बात है, इनमें तो कोई ऐसी चीज भी नहीं जो इनको अल्लाह के नेक बंदों में शुमार करने का सबब बने, सोचे जरा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह आलम हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो अपनी पैगंबरी किसको अता करे, यानी अल्लाह के इल्म में जो रसूल बनने का अहल है, जो रिसालत की जिम्मेदारी को उठा सकता है, जो हर तरह के अखलाक से आरास्ता है सुभान अल्लाह, और बुराई से महफूज है, अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तकाजे के मुताबिक उसे ही रिसालत का मनसब अता फरमाते हैं सुभान अल्लाह। और जो इस मेयार पर पूरा ना उतरता हो और ना ही उसकी अहलियत रखता हो, तो चाहे दुनिया उसको कितना ही बड़ा माने, कितना ही बड़ा लीडर उसको तस्लीम करे, वो अल्लाह ताला के पास नाकाबिले कबूल होता है। आप देखिए लोगों की सोच कितनी, यानी आप देखें कि लोगों की सोच भी छोटी है, लोगों का जहन भी छोटा है, और लोगों की पसंद कितनी बुरी है कि बुरे लोगों को लीडर्स चुनते हैं और बनाते हैं। आज आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को आप देख लीजिए, यानी मेजोरिटी कह रही है जिनको कि जो बिल्कुल अकल से पैदल हो चुके हैं, जिनकी इतनी उम्र हो चुकी है कि वो एक तरह से क्या कहेंगे इसको, उनका दिमाग बहक गया है, लेकिन वो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के रहनुमा बने हुए हैं, है कि नहीं आप बताइए। जिस उम्र में लोगों की अकल बहक जाती है, हम कहते हैं ना सठिया गए हैं बुढ़ापे में, तो जो उम्र सठियाने की होती है उस उम्र में लोग उनको अपने मुल्क का, इतने बड़े बड़े मुल्कों का रहनुमा बना रहे हैं, और उस सठियाने की वजह से वो जो इतने बुरे बुरे फैसले कर रहे हैं, इन्हें उनकी बातों को देखकर भी लगता है, कोई भी यही कहेगा ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को देखकर जो आजकल हैं, कि सठिया गए हैं और दूसरों को भी पागल बना रहे हैं, एबनॉर्मल पर्सन दिखाई देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो आप देखें कि ये जो बड़े बड़े मुजरिम हैं और जो सठियाए हुए लोग हैं, खुद तो बहक रहे हैं, खुद तो गुमराह हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी अपनी नेशन को भी गुमराह कर रहे हैं ना, है कि नहीं। ऐसे लोग समझते हैं कि अच्छा हम अच्छे हैं और हमको अच्छा ही बनना चाहिए, तो हमको अच्छे का ही खिताब मिलना चाहिए। कैसे ऐसे सठियाए हुए लोगों को अच्छे का खिताब मिल सकता है भला? तो ये जो लोग होते हैं गुमराह करने वाले, मुजरिम अकाबिर, हर बस्ती में, हर शहर में, हर मुल्क में होते हैं। तो हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है कि हम बहक ना जाए उनकी बातों में। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की नहीं हमें चाहिए, बल्कि हमें तो ऐसे लीडर्स, ऐसे उस्ताद की तलाश होनी चाहिए, ऐसे लोगों की तलाश होनी चाहिए जो हमें हक के रास्ते पर चलने में मददगार साबित हों, जो हमें नेकियों के रास्ते में चलने में मदद दें, जो हमारे ईमान की रोशनी को मजीद बढ़ा सकें। तो जो चिराग जलता है वो अंधेरा दूर कर देता है, और जो ईमान कुफ्र से मरऊब हो जाए वो मغلوب हो जाता है। हमें दूसरों से असरअंदाज नहीं होना है, बल्कि हमें अपना असर उन पर डालना है। तो बहुत सारे लोग थोड़ी देर के लिए ईमान कबूल करते हैं, जिनका ईमान कमजोर होता है, तो फिर वो दूसरों से मुतासर हो जाते हैं और उनको उन्हीं को फॉलो करते हैं। एक्चुअली उनका एक कह सकते हैं आप इस बात को कि नहीं, वो एक तरह से कंफ्यूजन का शिकार थे, उनको एल्यूजन था वो, कि वो एक कंफ्यूजन का शिकार थे और फिर फौरन बहक भी जाते हैं। तो अगर ईमान मजबूत होगा तो हम बहकेंगे नहीं, ना ही भटकेंगे। ऐसे उस्ताद अपने लिए चूज करें जो आपको आपके ईमान और अमल में आगे बढ़ाएं, आपके नूर को बढ़ाते जाएं, जो आपको दीन दुनिया में बैलेंस करना सिखाएं, जो आपको इस्तेकामत अता करें, जो आपको नेकी के रास्ते पर ले जाने में मददगार साबित हो। ऐसे उस्ताद चूज करें जो आपको नेकियों की तरफ मोल्ड कर दे, विजन विजन बदल जाए। तो बहरहाल आप देखिए आजकल जो जो लोग अरबी पढ़ाते हैं, जैसे अपने आपने अपने ममालिक में देखा होगा कि अरबी पढ़ाने वाले उस्ताद आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं, 15 मिनट में 7-10 बच्चों को पढ़ाकर चले जाते हो, कुछ ऐसा छोड़ते हैं उस्ताद ऐसे बच्चों पर, तो रटा कर चले जाते हैं, उनमें कोई रूहानी, किसी को मोटिवेट करने का जज्बा ही नहीं रखते वो, क्योंकि वो पैसे कमाना या फिर एक्चुअली सिर्फ दुनियादारी के लिए आते हैं। तो ऐसे उस्ताद का इंतखाब करें जो आपके, हमारे, अपने बच्चों के दिलों में वो जज्बा, वो तड़प, वो अज्म, वो हौसला पैदा कर सके। अल्लाह ताला हमें अच्छे लीडर्स, अच्छे रहनुमा, अच्छे उस्ताद अता करे, अच्छे गाइड करने वाले, अच्छे इन्फ्लुएंसर अता करे अल्लाह ताला हमें, ना कि बुराई की तरफ ले जाने वाले लोग। तो दरअसल ये आयत अल्लाह ताला की कमाल हिकमत पर दलालत करती है, सुभान अल्लाह, कि हर जन के अल्लाह ताला बहुत रहीम है और बहुत दरगुजर करने वाला, बहुत माफ करने वाला, बहुत अता करने वाला, बहुत फजल एहसान का मालिक है, लेकिन वो हिकमत वाला भी है। वो अपनी बख्शिश से सिर्फ उसको नवाजता है जो उसका अहल होता है, और इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने मुजरिमों को वईद सुनाते हुए फरमाया कि अनकरीब पहुंचेगी गुनहगारों को जिल्लत अल्लाह के यहाँ, यानी वो दुनिया में भी जिल्लत पाएंगे, और अगर नहीं दुनिया में जिल्लत मिली तो उनको आखिरत में तो जिल्लत और रुसवाई ही से हमकिनार होना पड़ेगा। जैसे वो दुनिया में हक के साथ तकबर से पेश आते रहे, अल्लाह ताला उनको जलील और रुसवा करेगा और सख्त अजाब उनको मिलेगा, क्योंकि वो चालें चलते थे। वो अजाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से उन पर जुल्म नहीं होगा, बल्कि उनकी चालबाजियों के सबब से अल्लाह ताला उन्हें सख्त अजाब में मुब्तला फरमाएगा। तो जो रिसालत है दरअसल ये वह भी चीज है, ये किसी के चाहने से नहीं मिला करती। तो वो लोग दरअसल एक्चुअली कुफारे मक्का हठ धर्म भी थे कुछ लोग, जो ईमान नहीं लाना चाहते थे। जब उन्होंने चांद के फटने का वाकया देखा था तो कह दिया था कि ये तो साफ जादू है। तो उनकी हठ धर्मी की एक दलील है ये, और अब कह रहे हैं कि रसूलों की तरह हम पर फरिश्ता नाजिल हो और रसूलों को जो किताब और हिकमत और नबुवत दी गई है वो हमें भी मिले, ये जब तक हमें नहीं मिल जाएगी हम ईमान नहीं लाएंगे। तो हर कोई वही का बार उठाने के लायक नहीं होता है। आप देखिए वही जब नाजिल होती थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती थी, है ना? आपकी सब्र की इंतहा आप देखें कि कोई सहाबी आपके बाजू बैठे थे और आपका घुटना उनके पैर पर था, तो वो समझ वो कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि कोई जैसे ये इतना बोझ मुझ पे रख दिया गया जैसे कि कोई हाथी हो, इतना बोझ होता था वही का। तो हर कोई इस काबिल नहीं होता, हर किसी के अंदर इतनी इस्तेदाद नहीं होती। तो जो अंबिया हैं ये इस जिनको अल्लाह ताला ने खुद चुना है, अल्लाह ताला ने पैदाइश से ही उनके अंदर ये तमाम सिफात रख दी थी। ये मेहनत और मशक्कत से हासिल होने वाली चीज नहीं है, ना ही रियाजतों से हासिल होने वाली चीज है नबुवत। अल्लाह ताला ही जानता है कि इंसानों में कौन है जो नबुवत का बार उठा सकता है या उसके काबिल है। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके लिए चुना अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको अखलाक में कामिल बनाया और आपने उसका हक अदा कर दिया। वाकई में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर देखें पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ये हम पर वाकई में अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रसूल चुना। अल्लाह ताला ने कुरान में इसको एहसान बताया भी है। अल्लाह ताला ने अपनी किसी नेमत का एहसान नहीं बताया, लेकिन लकद मन अल्लाह की तहकीक अल्लाह ताला ने एहसान किया कि खुद तुम ही में से एक रसूल उठाया, मबूस किया। सुभान अल्लाह, वाकई में हम पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीइन वो इसके अहल थे कि उन्हीं को रिसालत मिले, उन्हीं को नबुवत मिले, उन्होंने उसका हक अदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज की आयतें थी। हासिल मतलब क्या हुआ, क्या समझे आप आज की आयतों से और क्या सीखे आप? कौन से ऐसे नुक्ते हैं इसमें जो गौर फिक्र पर हमको उभार सकें? पूरे पेज की अगर आयतें हम ले लें 119 से 124 तक, कि पहले तो हमें खाने का तय्यब चीजें खाने का हुक्म दिया गया, हलाल और तय्यब, के अल्लाह का नाम लेकर खाएं कोई भी चीज। अल्लाह का नाम लेकर खाने का मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी बुरी चीज खा लो, अल्लाह का नाम लेकर खाने का मतलब ये कि कोई तय्यब चीज ही खाओ तुम, पाकीजा चीज, है ना? और हर किस्म के गुनाहों से बचने के लिए हमें कहा गया है, जाहिरी गुनाह हो या बातिनी गुनाह हो। तो हमको अपने नफ्स का एहतसाब करना चाहिए रोजाना। हम एहतसाब करें सोने से पहले कि आज मैंने कोई ऐसे काम तो नहीं किए, कोई जाहिरी गुनाह या कोई बातिनी गुनाह, और अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो गया है तो उस पर अल्लाह ताला से माफी मांगे। आज का मसला आज ही हल कर दें, उसको कल पर ना उठा रखें, वरना जमा होते होते बहुत सारे बोझ जमा हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ना खाओ तुम वो चीज जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, ये नाफरमानी के काम है। तो इस पर हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए हलाल और हराम के बारे में, पूरे माशरे में, सोसाइटी में, हर जगह। कि एक मुसलमान कहीं भी चला जाए वो हमेशा हलाल और हराम की बहुत फिक्र और परवाह करता है। ऐसा नहीं कि जिस होटल से जहां से जो चीज मिले बस ले ले और खा ले और अपना पेट भर ले, नहीं। बल्कि जब तक उसे कंफर्म नहीं हो जाता कि ये हलाल है, और हलाल भी है तो वो सही इस्लामी तरीके से जुबा किया हुआ है या नहीं है, तब तक वो नहीं खाएगा। भले ही वो दाल और सब्जी खा लेगा, लेकिन अल्लाह के नाम के अलावा ऐसा कुछ किसी को झटका देकर मारा गया तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा। और सबसे अहम बात के आज की जो आयतें थी कि इंसान मुर्दा था, यानी आप सोचिए कि अगर एक लम्हे के लिए तस्वर करें, वाकई में मैं तो हमेशा ये बात सोचती हूँ और यकीनन आप भी सोचते होंगे कि अगर हम एक लम्हे के लिए तस्वर करें कि कुरान ना होता तो हम कहाँ खड़े होते, ईमान ना होता तो आज हमारा क्या हाल होता। कितनी करोड़ा करोड़ भी नहीं हम कह सकते, उससे भी बढ़कर दौलत है आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ईमान से नवाजा, हमें कुरान से नवाजा, इतनी बेहतरीन किताब दी हमारे लिए, ऐसे रसूल को मबूस किया कि जिनकी तालीमत आज तक जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा को जजाए खैर दे अल्लाह ताला कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत को महफूज किया और हम तक पहुंचाया, वरना आप बताएं आज हम कहाँ खड़े होते। तो यहाँ पर इस्लाम से बेबहरा है वो मुर्दा है असल में। तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिंदा लोगों में शामिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी की बात है। और हमें सबसे पहले ये बात देखना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसका इन्फ्लुएंस हम पर सबसे ज्यादा है, किसकी कॉपी हम करते हैं, किसको फॉलो हम करते हैं, किसके नक्शे कदम पर हम चलना चाहते हैं, मुजरिमों के या नेक लोगों के। क्योंकि अल्लाह तआला फरमा रहे ना कि यहाँ पर बना दिया उसने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम, तो हमें गौर व फिक्र करना है। सुभान अल्लाह, आप सोचे कि शिर्क को मौत से और जुल्म से तशबीह दी गई है, और ईमान दरअसल हयात और नूर है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग हयात हैं, जिंदा हैं, इस्लाम के नूर से मुनव्वर है हमारा सीना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको हमेशा मुनव्वर रखे, हमारे ईमान में कभी कोई कजी ना आए, कोई टेढ़ ना आए। और हमें फिर ये रोशनी को क्या करना है, इसे आगे फैलाना है, आगे बढ़ाना है, दूसरों को भी इससे मुनव्वर करते चले जाना है। तो हमें हलाल और हराम का ख्याल रखना है, गुनाहों से बचना है, हर किस्म के गुनाहों से बचना है, जाहिरी बात नहीं, हर किस्म के। खाने पीने में हलाल और हराम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और हमें ईमान की हिफाजत करनी है, रोशनी को मजीद बढ़ाना है, ईमान की रोशनी को मजीद बढ़ाते रहना है। और वो किससे बढ़ेगी, नेक आमाल से, नेकियों से आगे बढ़ेगी हमारे ईमान की रोशनी। दरअसल जो एक लाइट होता है, नूर होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, मुनव्वर होता है, वो दूसरों को भी रोशनी पहुंचाता है। तो हमें ऐसे ही रोशनी का मीनार बनना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान को हमें आगे बढ़ाने वाला बनाए, ईमान को मजबूत करने वाले जो जराए हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने अपनाने वाला बनाए हमें। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।